ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक संख्या 22। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तं तदर्हणं ग्रहीतं ग्रहीतुं कृतधीरेणं भयनामाभ्यपद्यत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक यवनराज उसे बंदी करने के लिए तुरंत आ धमका। तात्पर्य। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी है। जब तक जीव छोटा बच्चा या अबोध बालक के रूप में रहता है, तब तक माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि उसे जीवन के मूल्यों की सही जानकारी दें। जब वह बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के सारे कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के पश्चात अपनी संतान की सहायता नहीं कर सकते। पिता अपनी संतानों की तुरंत सहायता के लिए कुछ संपत्ति छोड़ सकता है, किंतु उसे इन विचारों में मग्न नहीं रहना चाहिए कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। बद्ध जीव का यही रोग है। वह न केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है, वरन मरने के पश्चात अपने संतान के लिए इतना धन छोड़ जाना चाहता है जिसे वे इंद्र तृप्ति में खर्च कर सकें। जो भी हो, प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, इसीलिए मृत्यु को भय कहा गया है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचने में मग्न था, किंतु मृत्यु ने इसकी प्रतीक्षा नहीं की। मृत्यु किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती, वह अपना कार्य तुरंत निपटाती है। क्योंकि मृत्यु बिना किसी हिचक के जीव को अपने साथ ले जाती है, अतः नास्तिकों के लिए यह चरम ईश्वर साक्षात्कार है। इस श्लोक में अतत अर्हणम अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों तथा समाज के कल्याण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। इनसे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं होता। दुर्भाग्यवश आज के समाज में तथा कथित शिक्षित व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। यद्यपि मनुष्य जीवन पाकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर मिलता है, किंतु वे कृपण के कृपण बने रहते हैं। वे अपने संबंधियों, देशवासियों, समाज आदि के विषय में ही सोच सोच कर अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है कि वह मृत्यु पर विजय पाना सीखे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मृत्यु को जीतने की विधि बताई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को भली भांति जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन वह मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। जो पूर्ण कृष्ण भक्त है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करता, वरन भगवान के धाम वापस जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा न करके लोग समाज, मित्रता, प्यार तथा संबंधियों के विचार में मग्न रहते हैं, किंतु यह श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व के लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है। हरिम बिना न श्रुतिम तरंतिम, श्री भगवान की शरण ग्रहण किए बिना कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। जनस्य मोहम यम अहम ममेति, ये भौतिक संसार में मूल रोग है। इस मोह में पड़ जाना, मैं और मेरा, मम इति अहम और मम, अहम मतलब मैं और मम मतलब मेरा। मैं ये शरीर हूं और ये शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, वो मेरे हैं। इस भावना की वजह से सारा संसार का चक्र घूम रहा है। जिस क्षण से व्यक्ति इस भावना को त्यागना सीखे, उस क्षण से मृत्यु रूपी संसार का चक्र उसके लिए घूमना बंद हो जाएगा। जब तक हम भौतिक संसार के विषयों में मग्न रहते हैं, तब तक यहां से हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। राजा पुरंजन कृपण थे, कृपण मतलब मंद बुद्धि के, जिनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, और ज्ञानहीन होने की वजह से अपने परिवार के प्रति उनके हृदय में इतनी आसक्ति थी कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। वो सोच भी नहीं सके कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसके लिए मैं चिंता करके क्या करूंगा, क्या लाभ होगा, क्या मेरे चिंता करने से मेरे मृत्यु के बाद परिस्थिति में ज्यादा सुधार हो जाएगा, क्या जो भी मेरी इच्छाएं हैं मेरे चिंता करने से पूर्ण हो जाएंगी। जब हम किसी भौतिक चीज के प्रति आसक्ति रखते हैं तो चिंता जागृत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि चिंता करने से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो हम बहुत ज्यादा चिंता करें, लेकिन समस्या का समाधान अगर नहीं हो चिंता करने से तो खामखा अपने आप को तकलीफ देने में क्या फायदा है, हमें क्यों चिंता करना चाहिए। चिंता जब तब जागृत हो जाती है जब हम सोचते हैं कि हम कर्ता हैं, कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार की वजह से व्यक्ति मूढ़ बन जाता है और फिर वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ देखभाल कर रहा हूं, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे समाज, मेरा देश, सब कुछ मेरी वजह से चल रहा है, अगर मैं नहीं रहा संरक्षण करने के लिए तो फिर इनका क्या होगा। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि एक बार उनके एक पहचान के व्यक्ति थे जो मृत्यु के द्वार पे खड़े थे, या कहिए सोए हुए थे, क्योंकि वो इतने बीमार थे कि उठ भी नहीं सकते थे, और अपने मृत्यु शैया पर जब लेटे हुए थे तो जब डॉक्टर उनके पास आए तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब कृपया मुझे केवल 2 साल और दीजिए, मेरे अभी कई योजनाएं हैं, जिन कारखानों को बनाने के लिए मैंने योजना की थी वो समाप्त नहीं हुई है, अभी काफी काम बचा है, ये समाप्त करके फिर मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे केवल 2 साल चाहिए मेरे सारे इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। जैसे कि ये डॉक्टर ही भगवान है, डॉक्टर खुद मृत्यु के शिकार में तो मृत्यु का शिकार हो जाएगा तो वो भला हमें कैसे मृत्यु से बचा पाएगा। जो व्यक्ति मृत्यु से के चंगुल से छूट चुका है वही मात्र हमें मृत्यु से बचा सकता है। जो खुद मृत्यु के शिकार होने वाला है वो भला किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु से कैसे बचा सकता है। इसीलिए हमें देवी देवताओं की उपासना भी नहीं करनी चाहिए। जब देवी देवता स्वयं मृत्यु के शिकार हो जाते हैं समय पर, तो वो हमें ये मृत्यु जाल से कैसे बचा सकते हैं? वो हमें संसार से मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्ति प्रदाता तो केवल विष्णु है, इसलिए उनका नाम है मुकुंद, मुक्ति प्रदाता। मुकुंद के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा, विष्णु के अलावा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा देवता क्यों ना हो, हमें संसार से मुक्ति नहीं दे सकता। जब एक मक्खी मकड़ी के जाल में फंस जाती है, तो जितना वो ज्यादा संघर्ष करती है, उतना उस जाल में ज्यादा फंस जाती है, निकल नहीं सकती वहां से। केवल वही व्यक्ति जो कि उस जाल में नहीं पड़ा हुआ है, वही उस मक्खी को निकाल सकता है जाल को काटकर। ठीक उसी प्रकार से हम सब ये माया के जाल में फंसे हुए हैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति जो खुद इस माया जाल में फंसा हुआ है, वो भला हमें कैसे माया जाल से मुक्त करा सकता है? केवल ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति व्यक्तियां जिन्होंने खुद इस माया जाल से मुक्ति पा ली है, वही केवल हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से राजा पुरंजन को यह जानना चाहिए था मनुष्य जीवन प्राप्त करके कि मृत्यु का सामना सभी को करना पड़ता है। हम कितना भी पैसा कमाएं, कितनी भी शक्ति हमारे पास हो, जो भी कुछ हो, मृत्यु सभी को आना है। एक व्यक्ति ने कहा है, एक कहावत है कि संसार में ये दो चीजें निश्चित हैं, एक है कर टैक्स और दूसरा है मृत्यु। ये दो चीजें से बचना बहुत मुश्किल है। हालांकि हम कोशिश तो करते हैं इन दोनों चीजों से बचने के लिए, लेकिन कर तो हमें देकर ही रहना पड़ता है। जितना भी हम बचाएं, कर तो देकर ही रहना पड़ता है। उसी प्रकार से मृत्यु, इसको भी हम पार नहीं कर सकते। सबको मृत्यु का सामना करना है, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं मृत्यु से घबराते हैं और सोचते हैं कि मृत्यु होगी तो मेरी योजनाओं का क्या होगा, मेरे सारे योजना, जो बड़े बड़े योजनाएं हैं, वो सब भंग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और इसके बाद में जैसे राजा पुरंजन सोच रहे हैं, फिर जिनका देखभाल मैं कर रहा था उनका आगे चल के देखभाल कौन करेगा? प्रहलाद महाराज बताते हैं कि देखभाल करने वाले केवल भगवान हैं। वो कहते हैं कि कई बार माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं और नाना प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था करते हैं, दवाइयां देते हैं, क्या नहीं करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे को अगर जाना है तो जाता है। उसी प्रकार से कई बार हम बीमार हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे से अच्छे दवाइयां होते हैं, लेकिन अगर हमें जाना है तो बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े दवाइयां, वो हमें बचा नहीं सकते। सो इस प्रकार से प्रहलाद कहते हैं कि जब तक भगवान श्री हरि की इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण किसी को मारना चाहे तो कौन उसे बचा सकता है, और अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहे तो कौन उसे मार सकता है? दूसरे शब्दों में, सुरक्षा प्रदान करने वाले केवल भगवान श्री हरि हैं। श्री कृष्ण ही सबको बचा सकते हैं। और जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है, जिस व्यक्ति के हृदय में इस सिद्धांत में पूरी तरह से विश्वास है, उसे भक्त कहते हैं। प्रामाणिक भक्त तो वो है जो पूरी तरह से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रित कर देता है। ये है शरणागति के लक्षण। शरणागति का मतलब क्या है? हम सब सोच सकते हैं मैंने भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया है, लेकिन शरण लेने का मतलब क्या है? सनातन गोस्वामी इसकी परिभाषा करते हैं। वो कहते हैं अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासो आत्मतत्वे गोपतृत्वे वर्णम तथा कार्पण्यम आत्मनिक्षेपम षड्विधा शरणागति ही। शरणागति के छह ये गुण है या लक्षण है। सबसे पहला गुण ये है आनुकूल्यस्य संकल्पः। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना बड़े दृढ़ता से। जैसे हम अभी श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारी चीजें अनुकूल हैं। जैसे कि हम भागवत क्लास में आते हैं, भागवत क्लास सुनते हैं, गीता क्लास सुनते हैं, हम भगवत गीता या भागवत पढ़ते हैं, हम हरि नाम का जाप करते हैं, मंदिर में आकर हरिनाम संकीर्तन में शामिल होते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। अभी कार्तिक महीना है तो सुबह शाम हम भगवान श्री दामोदर को हम दीप अर्पण करते हैं, हम केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ऐसे कितने सारे विधि विधान हैं, नियम हैं, जिनका पालन करने से हमारी भक्ति में हम विकास कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं अनुकूल्यस्य संकल्पः। मतलब संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। केवल ये नहीं कि जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं उन चीजों को हम करें, लेकिन दृढ़ता से करें। इसको विश्वास करते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा ये क्या चीज है? श्रद्धा मतलब वो दृढ़ विश्वास कि केवल कृष्ण भक्ति करने से सारे चीजें संपन्न हो जाएंगी, मुझे और किसी भी चीज की करने की आवश्यकता नहीं है। इसको श्रद्धा कहते हैं। तो इस प्रकार से आनुकूल्यस्य संकल्पः का मतलब है कि जो भी भक्ति मार्ग में हमें बतलाया गया है, जो अनुकूल है भक्ति की प्रगति करने के लिए, उसे हमें दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए। अगर हमें 16 माला जाप करने हैं तो दृढ़ता से हमें करने चाहिए। अगर हमें मंदिर में रोज आना है, कम से कम भगवान के दर्शन के लिए एक बार आना है, रोज दृढ़ता से करना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए इसमें। हमें प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने का आदेश दिया गया है तो रोज पढ़ना चाहिए, दृढ़ता से पढ़ना चाहिए। इसको आनुकूल्यस्य संकल्पः कहते हैं। और उतनी ही दृढ़ता से हमें उन चीजों को त्यागना चाहिए जो हमारे भक्ति में हानिकारक है। इसको कहते हैं प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम्। जो भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्यागना। जैसे कि अभक्तों का संग, जैसे कि जो वर्जित आहार है उसको ग्रहण करना इत्यादि। तो अगर हम इन चीजों को दृढ़ता से त्यागें तो उस हद तक हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। टेलीविजन नहीं देखना, सिनेमा नहीं देखना, बाहर होटल वगैरह में नहीं खाना, अभक्तों का संग करना, ये सारी चीजें हमारे लिए वर्जित हैं। तो जब हम इन चीजों को त्याग करते हैं तो दृढ़ता से त्याग करना चाहिए। अगर हम डामाडोल बीच बीच में हो जाते हैं तो फिर भक्ति में हमारी प्रगति भी रुक रुक कर होगी। जैसे कोई गाड़ी चलती है, इसका इंजन ठीक नहीं है, चलता है फिर से बंद होता है, फिर से धक्का मार कर धुप 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 चलता है। तो हम भी वैसे ही भक्ति में चलेंगे, आगे बढ़ी गाड़ी धक्का मार के बिल्कुल झटके से आगे बढ़ी, बंद हो पड़ी, फिर से एक चालू कर दिया, इग्निशन लगा दिया, फिर से चालू हो गई, फिर रुक गई, ऐसे होगा। अगर हम अच्छे ढंग से स्मूथली प्रगति करना चाहते हैं तो नियमों का पालन सही ढंग से होना चाहिए, दृढ़ता से होना चाहिए। शरणागति के लक्षण ये हैं। और तीसरा लक्षण है रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि हमारी रक्षा कर सकते हैं और वो करेंगे। केवल इतना नहीं कि वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति सोच सकते हैं कि वो शायद वो कर सकते हैं लेकिन करेंगे क्या। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही वो घर से निकल पड़े, जंगल में गए, वैराग्य का जीवन सब कुछ त्याग दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि वो 16 वर्ष अपने माँ के घर में रहे, बाहर आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बाहर आऊँगा तो माया में पड़ जाऊँगा और मेरी तपस्या वगैरह नहीं होगी, तो माया बहुत शक्तिशाली है, इससे अच्छा यही है कि मैं माँ के घर में बैठूँ। तो 1 साल 2 साल नहीं, 16 साल अपने माँ के घर में रहे। आखिर कौन माँ या पिता ऐसे हैं जो 16 साल बच्चे को घर में रखकर वो चिंतित नहीं होंगे। कई बार वेद व्यास ने, माता ने, जावाली देवी ने बहुत निवेदन किया, अरे बालक आओ, बाहर आओ, नहीं नहीं माया बहुत शक्तिशाली है, माया में पड़ जाएंगे, अंदर यहीं हम ठीक हैं, शुक्रिया निमंत्रण के लिए, लेकिन हम यहाँ पर ठीक हैं, जहाँ हैं वहीं पर अच्छे हैं। आखिर में वेद व्यास जी को स्वयं श्री कृष्ण को बुलाना पड़ा, आप ये अब कुछ कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण आए और पेट में जो बच्चा था उनसे कहा कि हे बालक, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम माया में नहीं पड़ोगे। अच्छा आप कह रहे हैं ना, ठीक है। फिर आए, बाहर तो आए लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, घर में रहे नहीं, घर में रहने से खतरा है कहीं घर पारिवारिक जीवन में फिर आसक्त हो जाए, माँ का लाड़ प्यार होगा, पिता का लाड़ प्यार होगा, बेटा खाओ, बेटा पियो, बेटा ऐसा करो वैसा करो, तो बोला ये इसमें आसक्ति में पड़ जाऊंगा, तो सीधे निकल पड़े, जन्म लेते लेते ही बस चल पड़े जंगल की ओर। और वेद व्यास इतने ज्ञानी पुरुष थे, उपनिषद पुराण इत्यादि के लिखने वाले थे, रचना रचयिता, वो भी हा पुत्र करके पीछे भागे, अरे पुत्र कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे। तो अपना लड़का ब्रह्मचारी हो जाता है तो वेद व्यास जैसे व्यक्ति को भी कभी कभी दुख हो जाता है। तो वेद व्यास भी हा पुत्र करके पीछे चले गए। तो आचार्य समझाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने अपने आप को विस्तारित कर लिया। वेद व्यास को प्रसन्न करने के लिए सुखदेव गोस्वामी एक भाग वहां रह गए माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, और असली सुखदेव गोस्वामी वन में चले गए। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि सुखदेव गोस्वामी जब चले गए तो वेद व्यास सोच रहे थे कि कैसे उनको रोका जाए, कैसे वापस बुलाया जाए। उस समय उनके शिष्यों ने सोचा कि चलो उनको वापस कृष्ण के गुणों को सुनाकर हमें बुलाना चाहिए, कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण की लीला का गुणगान करेंगे तो फिर कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर अवश्य वापस चले आएंगे। तो उन्होंने दशम स्कंद का एक सुंदर श्लोक गाया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर् अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन इस श्लोक में आता है और आचार्य ये मानते हैं कि ये श्लोक श्रीमद् भागवत के सुंदर श्लोकों में से हैं। वैसे श्रीमद् भागवत का हरेक श्लोक सुंदर है, लेकिन उनका शॉर्ट लिस्ट भी बनाया जाए, फिर उन शॉर्ट सुंदर श्लोकों के लिस्ट में भी ये लिस्ट आगे 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 प्रमुख श्लोकों में से है। बरहा पीडम, अपीडम मतलब सर का आभूषण, वो क्या है, बरहा मतलब मोरपंख, बरहा पीडम नटवर मतलब नाच कर नृत्य करने वाले, नटों में से वर सबसे सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है, नृत्य करने वाले। नटवर वपुः, उनका जो शरीर दिव्य शरीर है हमेशा नृत्य के मुद्रा में रहता है। कर्णयोः कर्णिकारम, अपने कर्णों में कर्णिकार फूल उन्होंने लगाया हुआ है, और कर्णिकार फूल ये ऐसा फूल है जो बहुत सुंदर है, सुगंधित है, रंग बिरंगी है। तो कृष्ण भगवान कभी कभी अपने कान के पीछे ये फूल लगाया करते थे। बिभ्रत वास कनक कपिशम, बिभ्रत मतलब वो पहन रहे हैं, क्या वास है, कपड़े, किस प्रकार के कपड़े, कनक कपिशम स्वर्ण रंग के, बिजली के तरह चमकने वाले पीतांबर उन्होंने पहना हुआ है। वै जयंतीम च मालाम, उनके गले में वै जयंती माला लटक रही है, और ये वैजयंती माला भगवान की प्रिय माला है, वनमाला, इसलिए कृष्ण का नाम कभी कभी वनमाली भी होता है, वनमाली भी कृष्ण का नाम होता है। और ये पांच प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से बनाई हुई होती है। रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन, वो अपना अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और अपने जो उनके उनके होठ हैं उनसे बांसुरी का स्पर्श कर रहे हैं। सुधा अपूरयन, और उनके होठों से फिर सुधा या अमृत भर रहे हैं उस बांसुरी के भीतर, और ये बांसुरी की आवाज आ रही है। रंध्राण वेणोर, रंध्राण मतलब उन्होंने पकड़ा हुआ है क्या, वेणु, अधर अपने होठों तक, सुधा पूरयन फिर अमृत भर रहे हैं। रंध्राण वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, फिर गोप वृंदों के साथ में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वृंदारण्यम, वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। स्वपद रमणम, जो कि और रम्य हो चुका है वृंदावन का जंगल कृष्ण भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से, स्वपद रमणम प्राविशत प्रवेश कर रहे हैं। गीत कीर्ति, और उनके ग्वाल बाल मित्र उनकी कीर्ति या यश का गान कर रहे हैं। तो सुंदर दृश्य सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये हुआ, कि कैसे ये सब चले आए वापस, गोप वृंद जो हैं वो कैसे कृष्ण का गुणगान करते जा रहे थे। तो ये श्लोक जब सुना सुखदेव गोस्वामी ने तो तुरंत रुक गए, इतना सुंदर है ये श्री कृष्ण, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वास्तव में उस समय निराकार ब्रह्म में वो ज्यादा रुचि रखते थे, मुक्त पुरुष थे लेकिन ब्रह्म ज्ञान में लीन थे। कृष्ण के बारे में जब उन्होंने सुना तो इतने आकृष्ट हो गए, सोच लगे अरे ये श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं। लेकिन उस समय उनके मन में संशय आया, बहुत सुंदर हो सकते हैं, बड़े आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे। तो उस समय उनके वेद व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने भी उद्धव ने मैत्रेय को बताए हुए श्लोक का फिर से उच्चारण किया। याद रखिए आगे चल के वेद व्यास जी ने ही सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत सिखाया था। और इस प्रकार से वेद व्यास के शिष्यों ने यह श्लोक उद्धव का बताया, जिससे कि जिसमें उद्धव ये बता रहे हैं कि कौन श्री कृष्ण से ज्यादा कृपालु हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पूतना को भी, जिसने कि श्री कृष्ण का वध करने का प्रयत्न किया था, उसको एक धात्री का स्थान दिया है। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघाम से अपाययत अप्य साधवी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम को वा दयालुम शरणाम गतोन्य। वो बताते हैं कि कौन ऐसे कृपालु व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने पूतना जैसे राक्षसी को, जो कि कृष्ण का वध करने आई थी, उनको भी उन्होंने धात्री का स्थान दे दिया। बकी मतलब पूतना, बकासुर की बहन थी पूतना, इसलिए उसका नाम है बकी। अहो बकीयन स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पे कालकूट नाम का विष डालकर आई थी। जिघाम से या श्रद्धा से नहीं, अश्रद्धालु भावना से, अपाययत पिलाना चाहती थी, दूध पिलाना चाहती थी मां का रूप लेकर। अप्य असाध्वी, साध्वी नहीं थी, असाध्वी थी, लेकिन अंत में इतना सब होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने लेभे गतिम धात्री उचितम ततो, उनको एक धात्री का पद दिया। ये कृपालु है, कम वा दयालुम शरणम ततम्यम, कि ऐसे दयालु व्यक्ति और कौन हो सकते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना कि श्री कृष्ण सबसे आकर्षक हैं, सबसे सुंदर हैं और मुझे आकृष्ट होना चाहिए, उनके प्रति जाना चाहिए, लेकिन क्या वो मेरे ऊपर कृपा करेंगे, जब ये श्लोक सुना तो उनको मन में ये स्पष्ट हो गया, हाँ श्री कृष्ण सबसे कृपालु है, ठीक है मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। तो फिर वो रुक गए और वापस आ गए। तो ठीक उसी प्रकार से रक्षिष्यति इति विश्वास हो, हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते हैं, करने एक ही व्यक्ति है जो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मेरी रक्षा करेंगे। तो इस बात को जानने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है वो जान लेता है कि न केवल श्री कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो सबकी रक्षा करते हैं, परंतु वो रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो नहीं, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले से गारंटी दे दी है। जब भगवान श्री कृष्ण के वचनों में हम विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो इसको भक्ति कहते हैं, इसको कहते हैं रक्षिष्यति इति विश्वास हो। हमें कोई डरने की बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करने वाले हैं, वही सबकी रक्षा करेंगे, हम नहीं होते हैं। हमारे परिवार की रक्षा करने वाले हम कौन होते हैं, हमारे होते हुए क्या हमारे परिवार के सदस्यों का नुकसान नहीं हो सकता, क्या उनकी हत्या नहीं हो सकती। तो रक्षा करने वाले हम नहीं हैं, रक्षा करने वाले केवल श्री कृष्ण हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम गोपतृत्व वर्णम तथा, गोपतृत्व वर्णम मतलब ये समझ लेना कि हमारे पालन पोषण करने वाले भी श्री कृष्ण हैं, हम पालन पोषण नहीं करते। न केवल श्री कृष्ण सबका संरक्षण करते हैं, लेकिन वो सबका पालन पोषण भी करते हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, अपने आप को बहुत दीनहीन नम्र समझना और ये जान लेना कि हम इच्छा तो कर सकते हैं, लेकिन इच्छा की पूर्ति के लिए हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हैं। तो ये छह लक्षण हैं, षडविधा शरणागति ही, शरणागति के छह लक्षण। तो इन छह लक्षणों में से ये लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान श्री कृष्ण को अपना पालन और पोषण करने वाला माने और ये भी जान ले कि वही एकमात्र हमारी रक्षा कर सकते हैं और करेंगे। इसको भक्त कहते हैं। तो जब ऐसे भक्त के हृदय में श्रद्धा हो जाती है, फिर वो राजा पुरंजन की तरह क्यों सोचेगा। राजा पुरंजन के हृदय में भक्ति भावना नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी भगवान के प्रति, इसलिए वो सोच रहा था कि मैं ही रक्षा कर सकता हूं मेरे पुत्रों की, मेरी पुत्रियों की, और मेरे बाद क्या होगा इनका। लेकिन भक्त ऐसे नहीं सोचता। भरत महाराज जब जंगल में गए थे और जब उनके सामने एक हिरणी मर गई, उसका छोटा बच्चा वहां सामने था, तो वो भी सोचने लगे, हालांकि भाव भक्ति के स्तर में पहुंचे थे, फिर भी सोचने लगे कि अरे ये हिरणी के बच्चे का देखभाल कौन करेगा, अगर मैं इसका देखभाल नहीं करूंगा तो क्या होगा इसका, ये तो मर जाएगा। इसलिए अपने भक्ति मार्ग के ऊपर ध्यान कम हो गया उनका, सेवा कम हो गई, और उस हिरणी से इतना आसक्त हो गए कि वो पथभ्रष्ट हो गए और फिर उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार से कितने सारे कहानियां हैं। हम पालन पोषण करने वाले नहीं हैं। एक बार एक व्यक्ति थे जो जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन वो सन्यास लेना चाहते थे। तो जब सन्यास लेने की बात पत्नी से कही, पत्नी ने देखा कि इनकी इच्छा बहुत तीव्र है, तो उन्होंने कहा ठीक है लेकिन अब मैं गर्भवती हूं, बच्चे के जन्म लेने के बाद में आप संन्यास लेना। तो उसने कहा ठीक है, तो रुक गया वहां पर। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के साथ साथ मां का देहांत हो गया, बच्चा बच गया लेकिन मां मर गई। और उस समय ये व्यक्ति सोचने लगे, अबे अब क्या होगा, मेरी योजना मैंने बनाई कि बच्चे के जन्म के बाद मैं संन्यास लूंगा, तो अब क्या किया जाए, अभी मां भी नहीं है, अब छोटा सा बच्चा है, इसका पालन पोषण कौन करेगा, अब मुझे ही करना पड़ेगा और तो कोई है नहीं। तो फिर ऐसे बच्चे का पालन पोषण करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि वह व्यक्ति अपने कमरे में बैठे थे और अचानक उन्होंने देखा कि ऊपर एक चिपकुली, बोलते हैं ना स्पाइडर, ये लिजर्ड, चिपकुली, एक चिपकुली का बच्चा जो था वो ऊपर दीवार पे ऊपर था, अभी अभी उसका जन्म हुआ था, और अचानक वो नीचे गिर गया जमीन पर। और गिर के फिर वो इधर उधर देखने लगा बच्चा, और सामने उसे कोई कीड़ा छोटा सा मिला, तो तुरंत उसने मुंह खोल दिया, जिह्वा बाहर कर दी, उस कीड़े को पकड़ लिया, जिह्वा अंदर कर लिया, मुंह बंद कर लिया, पचन कर लिया। तो फिर ये व्यक्ति सोचने लगे कि देखो ये छोटा सा बच्चा है, वो भी प्राणी है, मनुष्य नहीं है, इसको किसने सिखाया कि कैसे खाना चाहिए, इसे कैसे पता चले कि ये मेरा भोजन है। उसको बराबर पता चल गया कि ये मेरा भोजन है, मुझे ऐसे मुंह खोलना चाहिए, जिह्वा बाहर करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, मुंह में अंदर लेना चाहिए, मुंह बंद कर लेना चाहिए, सब उसको जन्म से ही पता चल गया, किसने सिखाया। और इससे इसके बावजूद ये भोजन इसके सामने लाके रखा किसने, वो गिरा तो ठीक से, लेकिन ये कैसे हुआ कि इसके सामने उसका भोजन ठीक आ गया, इसने तो कोई व्यवसाय नहीं किया, कोई अपना दुकान नहीं खोला पैसे कमाने के लिए, दफ्तर में नहीं गया, तो कौन है जो व्यक्ति इसकी इसका पालन पोषण कर रहा है, इसके तो कोई माता पिता नहीं है लेकिन इसका पालन पोषण हो रहा है। फिर आगे सोचने लगे, इसी प्रकार से जंगल में भी इतने सारे पशु प्राणी हैं, पक्षी हैं, उनका देखभाल कौन कर रहा है, तो वही व्यक्ति इन सबका जो देखभाल कर रहे हैं वो मेरे बच्चे का भी देखभाल करेंगे। तो ऐसे सोचकर उसी क्षण वो घर से निकल पड़े। देखिए इतनी अटूट श्रद्धा हो गई, दृढ़ विश्वास हो गया इस बात पर, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा, कि मेरा परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने वाले, संरक्षण करने वाले मैं नहीं हूं, भगवान है। और निकल पड़े घर से, बच्चा पीछे अकेला घर के अंदर, कोई नहीं, मां नहीं, कोई नहीं, अकेला बच्चा पड़ा हुआ। और निकल गए, और क्योंकि उनकी श्रद्धा इतनी अटूट अटल थी, इसलिए भगवान ने एक ऐसे जोड़ी को, पति पत्नी को भेजा, वहां से गुजर रहे थे, जो भी बहुत समय से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें बच्चा दीजिए। और जब ये पति पत्नी वहां से गुजर रहे थे, घर इनका खुला पड़ा हुआ था, और एक बच्चे की रोने की आवाज आई अंदर से, उन्होंने सोचा अरे यहां सब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, घर खुला हुआ है, बच्चा रो रहा है अंदर, तो जाके देखा, आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो बच्चा है, कोई नजर नहीं आ रहा, खाली खाली घर, आजू बाजू में भी कोई दिखाई नहीं पड़ रहे। तो उन्होंने सोचा भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, तो उन्होंने बच्चा उठा लिया और बच्चे का पालन पोषण करने लगे। आगे चल के ये बच्चा आगे चल के राजा बन गया। और ये व्यक्ति जिन्होंने संन्यास लिया इस प्रकार से, उनका नाम था श्रीधर स्वामी। ये वही श्रीधर स्वामी जो आगे चल के श्रीमद् भागवत के सबसे मशहूर और महत्वपूर्ण टीकाकार बने। चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को बहुत मानते थे। एक बार ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के पास एक भक्त आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने भागवत के ऊपर टीका लिखी है, लेकिन श्रीधर स्वामी के टीका से कुछ अलग है, क्योंकि श्रीधर स्वामी के टीका से मेरा कुछ मतभेद है। तो चैतन्य महाप्रभु ने समझ लिया कि ये वल्लभ भट्ट जो है, इनके हृदय में थोड़ा घमंड आ गया है, और श्रीधर स्वामी को टीका को भी नकार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि श्रीधर स्वामी ये हमारे स्वामी हैं, ये असलियत स्वामी है। जो व्यक्ति भागवत के ऊपर टीका करने का मतलब डेरिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, साहस करता है श्रीधर स्वामी की टीका को अलग करके, वो वेश्या के बराबर है। जिस प्रकार से कोई स्त्री अपने स्वामी को नहीं मानती है वो वेश्या के बराबर है और दूसरे पुरुष के साथ जाती है, उसी तरह से जो व्यक्ति भागवत पढ़ता है और टीका करने का साहस करता है लेकिन श्रीधर स्वामी की टीका को नहीं मानता, वो भी ऐसे ही वेश्या की तरह। इतना कड़क बोले चैतन्य महाप्रभु, मतलब वो श्रीधर स्वामी को इतना ऊंचा पद देते थे। तो यही श्रीधर स्वामी ऐसे इस प्रकार से वो संन्यास ले लिए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेलगाम में भी हमें ऐसे करना चाहिए, श्रीधर स्वामी की नकल हम नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, समाज में उत्पात हो जाएगा ये। लेकिन समाज में ऐसे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं कहीं ना कहीं एकाद, तो ऐसे उदाहरण से ही हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं कि कैसे हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। यह संन्यास लेने की बात नहीं है, यह मूल जो संदेश हमें इस घटना से मिलता है वो ये नहीं कि हमें संन्यास लेना चाहिए। मूल बात यह है कि किस प्रकार से हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान ही हमारे पालन पोषण करने वाले हैं, हमारे संरक्षण करने वाले हैं। इस बात को हमें इस घटना से सीखना चाहिए, न कि ये कि हम घर को छोड़कर संन्यास ले लें, ऐसा नहीं। तो खैर, राजा पुरंजन के विचार ऐसे नहीं थे, अज्ञानी थे, कृपण थे, इसलिए वो सोच रहे थे संरक्षण करने वाला मैं हूं, कर्ता हम इति मन्यते अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो हमें भी एक राजा पुरंजन की तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें उन शुद्ध भक्तों की तरह बनना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया है कि किस तरह हमें विश्वास हमारे हृदय में रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे मृत्यु के बाद भी और हमारे जीते जी भी हमारे परिवार के सदस्यों का, हमारे समाज का, देश का इत्यादि वो पालन पोषण और संरक्षण कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
हरे कृष्ण मुझे आपने बताया कि जब कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में रहता है तो उसे कितना ही पैसा खर्च करने पर उसकी जान तो हम बचा नहीं सकते, तो हम कोई व्यक्ति ऐसा है कि मरणासन्न अवस्था में तो उसको हम उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए? नहीं
करनी चाहिए, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारे ट्रीटमेंट से वो ठीक होगा ये जरूरी नहीं है, केवल भगवान की अनुमति से वो ठीक होगा। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि हम थोड़ा बहुत ठीक करने का प्रयास करें, बाकी भगवान के हाथ में, हमारी ओर से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमें अपने कर्म करने चाहिए, भगवान उनके कर्म करेंगे, उनकी इच्छा हो तो बचाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं बचाएंगे, भगवान उनकी दृष्टि से देखते हैं।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने भरत महाराज का उदाहरण दिया कि उन्होंने हिरण को उन्होंने सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने कार्य किया। तो हम लोग देखते हैं कि भक्ति में अगर कोई आता है तो भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग जीव दया भी है, जो बताया गया है जीवों पर दया करना। और हो सकता है कि भगवान उस हिरण पर दया करने के लिए उन्होंने भरत महाराज के हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न की हो, तो क्या जीवों पर दया नहीं करनी चाहिए, उनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए उनके कर्मों पर?
सबसे पहले अपने आप के ऊपर दया करनी चाहिए। अगर मैं डूब रहा हूं तो मैं दूसरे डूबते हुए आदमी को क्या बचा सकता हूं? नहीं, मैं बोलूंगा मैं तैरना नहीं जानता और मैं सोचूंगा कि वो आदमी डूब रहा है, चलो कूद कर मैं बचाऊं, क्या यह बुद्धि की बात है, अकलमंदी की बात है? अगर मैं नहीं तैरना जानता और उस व्यक्ति को मैं बचाने गया तो हो सकता है कि जो भी थोड़े बहुत चांसेस उसके बचने के हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता और मैं उसको जल्दी से डुबा लूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, जब अपने आप को बचा सकूं तो फिर मैं दूसरों को बचा पाऊंगा। खुद मैं डूबूंगा तो मैं दूसरों को कैसे बचाऊंगा, उनको भी साथ में जल्दी से ले जाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से हिरण को बचाना यह गलत बात नहीं थी, लेकिन हिरण को बचाते बचाते खुद डूब जाना वो गलत बात हो गई। जीव दया करना है, लेकिन साथ साथ अपने आप की भक्ति की सुरक्षा भी करनी है। भरत महाराज की गलती क्या थी कि हिरण को बचा तो लिया, ठीक है, लेकिन साथ साथ इतनी आसक्ति उन पर हो गई, तो भौतिक आसक्ति हो गई कि वो भी खुद पथभ्रष्ट हो गए। तो ठीक उसी प्रकार से जीवों के ऊपर दया करके हमें प्रचार करना चाहिए, दूसरों के लिए समय निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं प्रयत्न करें हम अपना जाप छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। क्यों? हम प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को जाप करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन खुद जाप करने के लिए समय नहीं। हम दूसरों को बचाने जा रहे हैं, हम दूसरों को बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में, लेकिन खुद सुनने के लिए पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं। तो हम खुद कैसे टिक पाएंगे भक्ति में, और खुद टिक नहीं पाए तो दूसरों को कैसे हम भक्ति में लाएंगे या उनको कैसे टिकाऊ बनाएंगे। तो भरत महाराज की गलती ये हुई कि उन्होंने